यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 30 अप्रैल 2021 के बुलेटिन की हेडलाइंस। भारत में कोविड 19 संक्रमण में हाल में आई बेतहाशा तेजी के मद्देनजर यूएन एजेंसियां सहयोग और मदद में सक्रिय। यूरोप में संक्रमण के मामलों की तुलना में वैक्सीन की खुराक पाने वालों की संख्या हुई ज्यादा। जनहित में काम करने वाले मीडिया संगठनों पर भी महामारी का व्यापक असर। म्यांमार में राजनीतिक संकट के दौरान खाद्य संकट भी हुआ बदतर, यूएन एजेंसी मदद में सक्रिय। और सीरिया में तुलनात्मक शांति के बावजूद हालात बेहद नाजुक। हम आपको याद दिला दें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में कोविड 19 संक्रमण के मामलों में आई भारी तेजी का मुकाबला करने के लिए अस्पतालों में क्षमता बढ़ाने और अहम चिकित्सा सामग्री की किल्लत को दूर किए जाने पर जोर दिया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में WHO की क्षेत्रीय निदेशक डॉ पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे भारत के लिए ये सर्वोपरि प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बीच यूएन एजेंसियां भारत में चिकित्सा सामान की उपलब्धता व अन्य तरह की मदद मुहैया कराने में सक्रिय हैं। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने भी भारत के लोगों के साथ संगठन की एकजुटता व्यक्त की है। एक रिपोर्ट के साथ सचिन गौड़।
भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 संक्रमण के 386,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है और लगभग 3,500 लोगों की मौत हुई है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को अपने ट्वीट संदेश में कहा कि वो कोविड 19 के भयावह फैलाव का सामना कर रहे भारत के लोगों के साथ हैं। वो संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र परिवार के साथ एकजुटता में खड़े हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र भारत के लिए समर्थन को बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उधर जिनीवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा,
In the last couple of weeks, much of the world's attention has focused on India. And although that country remains in the grip of a severe crisis,
पिछले दो हफ्तों से अधिकांश दुनिया की नजरें भारत पर लगी हैं। देश को एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है, मगर भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के प्रदर्शन से हम उत्साहित हैं। महानिदेशक गेब्रियसिस के शब्द। भारत में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा डिजालियन के नेतृत्व में यूएन प्रणाली महामारी पर जवाबी कार्रवाई के तहत स्थानीय एजेंसियों को मदद प्रदान कर रही है। यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों को अति महत्वपूर्ण उपकरण और चिकित्सा सामान तेजी से उपलब्ध कराने में संयुक्त राष्ट्र यथासंभव प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों के तहत उपकरण और जरूरी चिकित्सा सामग्री प्रदान किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और नाक के जरिए ऑक्सीजन देने में काम आने वाले 500 उपकरण उपलब्ध कराए हैं। साथ ही ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, कोविड 19 टेस्टिंग किट और अन्य निजी बचाव किटों के सिलसिले में भी सहायता दी जा रही है। संगठन की ओर से अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तरों और महत्वपूर्ण उपकरणों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सचल फील्ड अस्पतालों का भी इंतजाम किया गया है। महानिदेशक गेब्रियसिस ने शुक्रवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया के अनेक अन्य देश भी कोविड 19 संक्रमण की चपेट में हैं। इनमें ब्राजील भी है। अब तक ब्राजील में 1,40,00,000 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 4,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
Since the beginning of November, Brazil has experienced an acute crisis with increasing cases, hospitalizations and deaths.
नवंबर 2020 से ब्राजील एक बड़ा संकट झेलता रहा है। संक्रमणों में तेजी, अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों और मृतक संख्या में बढ़ोतरी, जिनमें युवा भी हैं। अप्रैल 2021 में गहन चिकित्सा कक्ष देश भर में लगभग पूर्ण क्षमता पर काम कर रहे हैं। यूएन एजेंसी प्रमुख ने कहा कि पिछले 4 हफ्तों में नए मामलों में लगातार कमी दर्ज की गई है। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों और मृतक संख्या में भी गिरावट आई है। महानिदेशक गेब्रियसिस ने इस रुझान के जारी रहने की उम्मीद जताई, मगर आगाह भी किया कि इस महामारी ने सिखाया है कि कोई भी देश कभी भी ढिलाई नहीं बरत सकता।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में यूरोपीय क्षेत्र के लिए निदेशक डॉक्टर हैंस क्लूगे ने बताया है कि यूरोपीय देशों में COVID-19 की वैक्सीन की खुराक पाने वाले लोगों की संख्या कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की तुलना में ज्यादा हो गई है। साथ ही उन्होंने आगाह भी किया है कि नए संक्रमण मामलों और मृतक संख्या में गिरावट दर्ज किए जाने के बावजूद वायरस अभी मौजूद है और उसके विनाशकारी असर को टालने के लिए टीकाकरण के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन किया जाना अहम है। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर हैंस क्लूगे ने भारत में COVID-19 संक्रमण के भयावह हालात पर प्रभावित लोगों व उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने यूरोपीय क्षेत्र के सभी देशों से भारत की सहायता के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की पुकार भी लगाई। UN स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने गुरुवार को बताया कि यूरोपीय क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला 462 दिन पहले सामने आया था। पुष्ट मामलों के आधार पर पूर्ण यूरोपीय आबादी का 5.5% हिस्सा COVID-19 से संक्रमित हुआ है, जबकि टीकाकरण मुहिम के दौरान कुल आबादी के 7% हिस्से को वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। डॉक्टर क्लूगे ने कहा कि संक्रमण के नए मामलों में गिरावट के साथ साथ संक्रमितों के अस्पतालों में भर्ती होने के मामलों और मृतक संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद वायरस मौजूद है और उसके विनाशकारी असर की आशंका अब भी बरकरार है। सच बात यह है कि इस क्षेत्र में जनवरी 2020 से COVID-19 संक्रमण के सभी पुष्ट मामलों में लगभग 50% इस वर्ष के पहले 4 महीनों में दर्ज किए गए। 2 महीने में ये पहली बार है जब नए मामलों में पिछले सप्ताह तेजी से गिरावट आई। फिर भी पूरे क्षेत्र में संक्रमण की दर अब भी बहुत अधिक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि COVID-19 महामारी का एक बड़ा नुकसान जनहित के लिए काम करने वाले मीडिया संगठनों के समक्ष उत्पन्न वित्तीय चुनौतियों के रूप में सामने आया है। UN प्रमुख ने जनहितैषी मीडिया के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
एक अनुमान के मुताबिक इस वर्ष अखबारों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसके मद्देनजर उन्होंने सचेत किया कि कुछ लोगों को डर है कि वैश्विक महामारी मीडिया के विलुप्त होने की घटना बन सकती है। UN प्रमुख ने कार्यक्रम के लिए पहले से रिकॉर्ड कराए अपने संदेश में कहा, हम ऐसा होने देने का जोखिम मोल नहीं ले सकते। महासचिव गुटेरेश ने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र तथ्य आधारित रिपोर्टिंग वैश्विक कल्याण के लिए बेहद अहम है, जिसकी मदद से सुरक्षित, स्वस्थ व हरित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। UN प्रमुख ने देशों से हाल ही में स्थापित जनहित मीडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष को समर्थन प्रदान करने की पुकार लगाई है। इस कोष का लक्ष्य मुख्यतः निम्न और मध्य आय वाले देशों में स्वतंत्र मीडिया संगठनों के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करना है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से पहले संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग ने परोपकारी संगठन लुमिनेट के सहयोग से UN के नेतृत्व वाली वेरिफाइड पहल के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया। वेरिफाइड मुहिम का उद्देश्य COVID-19 से मुकाबला करने के दौरान तथ्य आधारित जानकारी साझा किए जाने को बढ़ावा देना है। वैश्विक महामारी के दौरान भरोसेमंद सूचना की अहमियत को रेखांकित किया गया है, जो कि एक बुनियादी मानवाधिकार से बढ़कर जीवन और मृत्यु से जुड़ा प्रश्न है। इस पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र भ्रामक सूचनाओं व गलत जानकारी और नफरत भरे संदेशों व भाषणों से मुकाबला करने के लिए प्रयासरत है। घाना के सूचना मंत्री कोजो उपोंग नुक्रुमा ने बताया कि इन्फोडेमिक भ्रामक सूचनाएं फैलाने की महामारी की वजह से आर्थिक संकट और गहरे हुए हैं, जिसका सामना मीडिया को भी करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग झूठी सामग्री तैयार करके फैला रहे हैं और मीडिया के राजस्व में कटौती की जा रही है।
म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद राजनीतिक उठापटक और COVID-19 महामारी के असर की वजह से लगभग 2.5 करोड़ लोग यानी देश की तकरीबन आधी आबादी अगले वर्ष की शुरुआत तक निर्धनता में रहने के लिए मजबूर हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने शुक्रवार को जारी एक नई रिपोर्ट में ये बात कही है। उधर संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP म्यांमार में मौजूद राजनीतिक संकट के कारण उत्पन्न हालात के बीच खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लाखों लोगों के लिए भोजन व अन्य सहायता पहुंचाने के प्रबंध करने में सक्रिय है। म्यांमार में यूएन खाद्य एजेंसी के उपनिदेशक मार्कस प्रायर ने यूएन न्यूज़ के साथ एक खास बातचीत में बताया कि बैंकिंग व्यवस्था चरमराने के कारण लोगों को भोजन असुरक्षा के साथ साथ भोजन खरीदने के लिए नकदी का इंतजाम करने में भी परेशानी हो रही है। सुनिए अंशु शर्मा की ये रिपोर्ट।
यूएन खाद्य एजेंसी का कहना है कि ये खाद्य सहायता अभियान म्यांमार के मुख्य शहरों की निर्धन बस्तियों और ऐसे इलाकों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां 1 फरवरी को सेना द्वारा सत्ता का तख्ता पलट करने के बाद हाल के समय में आबादी का विस्थापन हुआ है। म्यांमार में WFP के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर मार्कस प्रायर बताते हैं,
म्यांमार में पहले से ही गंभीर रूप से गरीबी व्याप्त है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हालात सुधरे भी हैं, फिर पिछले साल COVID-19 के कारण बहुत से लोगों के रोजगार और आजीविकाएं खत्म हो गए। विदेशों में रहने वाले नागरिकों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि भी आनी बंद हो गई, क्योंकि थाईलैंड और अन्य देशों से ज्यादातर प्रवासी श्रमिक घर वापस लौट आए। ये प्रभाव शहरी केंद्रों पर विशेष रूप से बहुत गंभीर था, जिससे घरों में पौष्टिक भोजन की क्षमता पर असर पड़ा, जो स्वस्थ आहार के लिए जरूरी होता है।
म्यांमार में WFP के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर मार्कस प्रायर के शब्द। WFP ने आगाह करते हुए कहा है कि अगले 6 महीनों के दौरान अतिरिक्त लगभग 34 लाख लोगों के भुखमरी के दायरे में पहुंच जाने की संभावना है, विशेष रूप से नगरीय इलाकों में। म्यांमार में WFP के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर मार्कस प्रायर ने बताया,
It's been a very difficult few months for many people.
लोगों के लिए पिछले कुछ महीने बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। वर्तमान में कारखाने या तो बहुत कम चल रहे हैं या फिर पूरी तरह बंद पड़े हैं। बंदरगाह पर भी कोई खास काम नहीं चल रहा और बैंकिंग प्रणाली अर्थपंगु हो चुकी है। नकदी निकालने के लिए जगह जगह लंबी कतार में लोग दिख जाएंगे। इससे लोगों के ऑनलाइन के जरिए नकदी हस्तांतरण की क्षमता पर भी असर पड़ा है। म्यांमार के भीतर और विदेशों से म्यांमार आने वाली धनराशि दोनों पर।
म्यांमार में WFP के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर मार्कस प्रायर के शब्द। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में असुरक्षा जारी रहने के बावजूद आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों और कमजोर हालात वाली अन्य आबादियों के लिए सहायता उपलब्ध कराने का कार्य जारी है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अनेक बड़ी चुनौतियां भी सामने हैं।
सबसे पहले तो जिस पैमाने पर सहायता की जरूरत है वो एक बड़ी चुनौती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और दूसरी बात ये है कि इन विकट परिस्थितियों में किस तरह योजनाएं बनाई जाएं कि हम जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में सक्षम हों। हम आपात खाद्य स्थिति के लिए पहले ही योजना तैयार कर चुके हैं, जिससे अगर कहीं बाजार में पूरी आपूर्ति ना हो वहां भोजन की जगह नकदी देने का प्रावधान भी कर सकते हैं। इस समय हमारी प्रमुख चिंता है बैंकिंग क्षेत्र का मौजूदा संकट, जिससे नकदी लेने में मुश्किल हो रही है। अब तक नए और मौजूदा बैंकिंग वादों के संयोजन के माध्यम से हम आपातकालीन जरूरतें पूरी करने में सक्षम हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें शहरों में बड़े पैमाने पर इस नए परिप्रेक्ष्य में काम करना होगा जहां आपूर्ति तंत्र चरमरा चुका है।
म्यांमार में WFP के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर मार्कस प्रायर के शब्द। WFP आगामी महीनों में जितने लोगों को सहायता मुहैया कराएगा उसकी संख्या लगभग 13 लाख से 3 गुना बढ़ने की संभावना को देखते हुए ये सहायता उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी को 10 करोड़ 60 लाख डॉलर की रकम की तत्काल जरूरत है। इसके लिए यूएन एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता की अपील जारी की है।
सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गेयर पैडरसन ने चेतावनी के अंदाज में कहा है कि पिछले एक वर्ष में अपेक्षाकृत शांति के बावजूद ये महीना दर्शाता है कि हालात कितनी तेजी से खराब हो सकते हैं। यूएन के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीरिया में हिंसा, आतंकवाद, विस्थापन, अस्थिरता, निराश्रयता और COVID-19 की पृष्ठभूमि में बुधवार को सुरक्षा परिषद को संबोधित किया। विशेष दूत गेयर पेडरसन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी अलेप्पो में एक यूएन समर्थित अस्पताल पर हमला हुआ है। इसके अलावा सीरिया तुर्की सीमा के पास भी हमले हुए हैं, जहां यूएन एजेंसियां सीमा पार मानवीय राहत अभियानों का संचालन करती हैं। ये अस्पताल विस्थापितों के लिए बनाए गए शिविर के नज़दीक था, जहां घनी आबादी बसती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ज़्यादा संख्या में पुरुषों की मौतें हो रही हैं, महिलाओं को अपने घरों की बागडोर संभालनी पड़ रही है। विशेष दूत ने बताया कि एक साल में पहली बार सीरियाई महिलाओं के सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई है। उनकी आकांक्षा देश में नए उत्साह से राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत, स्थायी शांति और एक नया संविधान देखना है जिसमें सभी के अधिकारों एवं आज़ादियों की गारंटी दी गई हो। गेयर पेडरसन के मुताबिक देश के पश्चिमोत्तर इलाके में झड़पों में तेजी आई है, दक्षिण पश्चिम में हालात लगातार अस्थिर बने हुए हैं, मध्य सीरिया और पूर्वोत्तर में इस्लामिक स्टेट यानी दाएश के आतंकी हमले हो रहे हैं। विशेष दूत ने सीरिया में विकट हालात से सुरक्षा परिषद को अवगत कराते हुए कहा कि भोजन की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं, महंगाई बेलगाम है, लाखों लोग खाद्य असुरक्षा से पीड़ित हैं और देश में सामाजिक ताने बाने को भी ठेस पहुंची है। इसके मद्देनज़र उन्होंने महासचिव एंटोनियो गुटेरेश की वो अपील भी दोहराई जिसमें सीरिया पर प्रतिबंधों से बचने की बात कही गई है, ताकि सीरियाई नागरिकों के लिए भोजन, अहम स्वास्थ्य सामग्री और कोविड-19 के लिए चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा सके। संयुक्त राष्ट्र में शांति रक्षा अभियानों के प्रमुख ने कहा है कि इन अभियानों में वर्दीधारी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना यूएन के लिए एक अहम प्राथमिकता है। अवर महासचिव जियां पियर लैक्रुआ ने बुधवार को यूएन ट्रस्ट कोष यूएनएलजी इनिशिएटिव फंड की शुरुआत के अवसर पर आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। कुछ और ब्यौरा अंशु शर्मा से।
इस ताज़ा पहल के तहत घोषणा की गई है कि शांति अभियानों में महिला सैन्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लाइबेरिया, मैक्सिको, निजेर, सेनेगल और सियेरा लियों को वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। यूएन अधिकारी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव की एक्शन फॉर पीस कीपिंग पहल के तहत और महिलाएं शांति एवं सुरक्षा एजेंडा लागू करने के लिए उनके संकल्पों में शामिल हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का एक उपाय यूएन मिशनों में उनकी विभिन्न पदों पर भूमिकाओं और योगदानों की पहचान करना है। यूएन मिशनों के संचालन के तौर तरीके बेहतर बनाने के लिए विविधतापूर्ण टीमों के गठन पर बल दिया गया है, ताकि महिलाओं व पुरुषों को अपने कौशल, अनुभव और परिप्रेक्ष्यों द्वारा पूर्ण योगदान का अवसर हासिल हो सके। साथ ही उन्होंने आगाह किया है कि यह आम नागरिकों की रक्षा करने और शांति रक्षा के शासनादेश को संपूर्णता में लागू करने के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2018 में वर्दी धारकों में लैंगिक बराबरी हासिल करने के लिए रणनीति पेश किए जाने के बाद से शांति अभियान कार्यालय ने लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रगति दर्ज की है। यूएन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2018 से 2021 तक महिला स्टाफ अधिकारियों और सैन्य पर्यवेक्षकों की संख्या 12.3% से बढ़कर 17.8% हुई है। व्यक्तिगत महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या 22.3% से बढ़कर 30.4% और गठित पुलिस दलों में यह 9% से बढ़कर 14.8% हुई है। यूएन अवर महासचिव ने कहा कि इस क्षेत्र में दर्ज प्रगति के बावजूद तैनात महिलाओं की संख्या बढ़ाया जाना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्थाओं की कायापलट करने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और वो हमारे शांति अभियानों में पूर्ण योगदान दे सकें। जियां पियर लैक्रुआ ने गुरुवार को पेश इस पहल को एक ऐसा अहम साझेदार बताया जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के संबंध में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्थन व संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत।